أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیار ہیں اگلے سبق کے لئے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان کرے. ہم آج اگلا حصہ شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں اس کو اس تناظر میں سمجھتے ہوئے جہاں وہ کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے انداز سے بھی سمجھیں کہ ہمارے لئے اس میں اپلیکیشن کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے حکمت سے کام لیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن لگانا کہاں ہے, پہلے کتنی دیر ڈھونڈتے ہیں وہ. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کتنے پروٹوکول سے پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں نا, اس کے باوجود بھی مریض کو درد ہوتی ہے. تو یہ جملے لکھ لیں, تبلیغ کا کام بھی دوسرے کو انجیکشن لگانا ہے, اس سے بھی سخت ہے. آپریشن ہے, کسی کا ڈائسیکشن ہے, کیونکہ کوئی انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کو ٹوکا جائے. بچہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کو روکا یا ٹوکا جائے. تو جب آپ یہ کام کرنے لگیں تو حکمت سے کریں. بچہ چھری سے کھیل رہا ہے تو آپ جا کے ایک دم اس کی چھری پکڑیں, کھینچیں, تھکم پیل کریں تو کیا ہوگا؟ آپ خود جانتے ہیں کہ بچے کا بھی ہاتھ کٹنے کا ڈر ہے, آپ کا بھی کٹے گا. ہمارے یہاں آج کے دور میں تبلیغ کے نام پہ جو گھریلو تبلیغ, میں دوسری تبلیغ کو بات نہیں ابھی کر رہی, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خواتین کی تبلیغ کا, اور ابھی جو اس کا پہلا ہی اسٹیپ چل رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں, خاندان میں, گھر میں ون بائی ون تبلیغ. ابھی اسی کے اندر ہم نیکسٹ پڑھیں گے جس میں اجتماعی بات ہے نا. تو آپ اس وقت یہ سب سنتے وقت بھول جائیں کہ یہ کسی درس دینے والے کی بات ہے, یہ کسی امام کی بات ہے, عالم کی بات ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کی بات ہے, تبلیغی جماعت کی بات ہے. نہیں, یہ آپ کی اور میری بات ہے, اور اس کام پہ ہم میں سے ہر ایک اپوائنٹڈ ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہا, تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے قریب والوں کا. تو یاد رکھیے یہ سب سے اہم ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. جو ایک خاتون, ایک لڑکی, ایک عورت, ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی ہم سے درس نہیں ہوتا, ہم نہیں درس دے سکتے, جی لوگ ہماری بات نہیں سنتے, جی ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے کہ جاؤ اور کہیں دین کی بات کرو. یہ اس کی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کر بھی رہا ہے لیکن بھونڈے طریقے سے, معذرت کے ساتھ, برے طریقے سے. یہ ہمارے ہی بیچ جو بوئے ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے آگے آتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی قریب رہنے والا, اور میری نظر میں قریب رہنے والوں میں سب سے قریب تعلق بچوں کا ہوتا ہے. جب ہمارے قریب ترین رشتہ دار یعنی ہمارے بچے, جو ایک وقت تھا ہمارے وجود کا حصہ تھے, جب وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اپنا ہی ایرر ہے. یہ بیج ہم نے بویا تھا, اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس سارے موضوع میں آپ ہمیشہ یہ اپنے آپ کو رکھیں, یہ میری بات ہے, یہ مجھے کرنی ہے, یہ میرے سے متعلق ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک میں 16 واقعہ پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا توسر وتم بالخیر. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری. اس بک میں سے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں قریب کے لوگوں کو خواتین کا اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کے واقعات. ہم 15 واقعات پڑھ چکے ہیں, آج ہم 16th یعنی 16 واقعہ پڑھیں گے. اور واقعہ کن کا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انہیں قریبی لوگوں میں مال خرچ کرنے کی تلقین کرنا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے پاس مال جمع ہونے کے سبب پریشان ہوئے. ذرا رکیے ادھر ہائی لائٹ کریں, میں پھر بولوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے توجہ نہ دی ہو. کس بات پہ پریشان ہوئے طلحہ بن عبید اللہ؟ اپنے پاس مال جمع ہونے پہ پریشان ہوئے. ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ ختم تو اللہ نہ کرے کبھی ہم میں سے کسی کا ہو, کم ہونے پہ. ختم کبھی ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں پلے, اس وقت بھی بہت کچھ ہوتا ہے, کہیں پراپرٹیوں کی شکل میں, کہیں زیور کی شکل میں, کہیں گھر کی شکل میں, اور کہیں کوئی جمع شدہ کی شکل میں. لیکن ہم اس کو مزید بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ پریشان ہو گئے. اور یاد رکھیے جس کو مال کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا وہ اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے نام پہ بڑی بڑی رقمیں اور فگرز دیکھ کر ایسے ہی پریشان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے خلاف کچھ گناہوں کی لسٹوں کو دیکھ کے. کیونکہ مال آ گیا الحمدللہ حلال سے, اب یہ مال کہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو. یہ جو ہمارے کلچر میں, دنیا کا تو مجھے کم پتہ ہے لیکن اپنے کلچر کا پتہ ہے کہ ہم بعض دفعہ روز کی ضروریات کو ترس رہے ہوتے ہیں. بعض مرد ایسے ہیں करोड़ों हैं उनके पास, लेकिन रोज़ के खर्चे पानी पे घर में झगड़ा करते हैं। बाज़ लोग अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को, उनकी जिम्मेदारियों को आसान दर्जे पे पूरा नहीं करते, लेकिन उस दिन भी वो करोड़ों की डील कर रहे होते हैं। क्यों? कि वो उसको री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता होता है उधर डालने से ये होगा, और ताल्लुकात बिगड़ते हैं, तलखियाँ आती हैं। हालांकि याद रखिए कि जो माल है ना, ये आपको दूसरों की दुआएं दिलवाने का बहुत बड़ा जरिया बनता है। मैं इस चीज़ पे इसलिए बात कर रही हूँ कि ये हमारे ख़ास तौर पे अपने मुल्क में तो ये चीज़ वबा की तरह आम है। मर्द मशीनें बन के कमा रहे हैं, कोई गोल नहीं है कितना कमाना है, हमारी लिमिट क्या थी, कहाँ रुकना है, क्या एंड पे, नहीं कमाना कमाना। बड़ी अच्छी बात है, आप कमाइए और उसका कुछ हिस्सा अलग कर दीजिए जो आपको और आपके बच्चों को ज़रूरी है, आपकी बीवी को ज़रूरत है, आपके घर वालों को ज़रूरत है। बेसिक्स पूरी करके जितना मर्जी लगा दीजिए, जो मर्जी करें कोई रोकता नहीं है, लेकिन कहानी इससे अपोजिट है। तो ये लोग माल के जमा होने पर परेशान हो जाते थे। बीवी ने इस परेशानी का क्या हल निकाला? इनकी जौजा मोहतरमा हज़रत सादी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें वो माल कराबतदारों में तकसीम करने की तलकीन की। कैसी बीवी थी, हम होते तो क्या कहते, मुझे एक सेट और बनवा दें, मुश्किल पड़ेगी ना, फिर मैं आपको दे दूंगी, आपको वो काम आएगा। हम लोग अपने ऊपर लगाने को पसंद करते हैं, और यकीन करें हम में से अक्सर का मसला ही क्या है कि हमारे पास बहुत है। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ हमारी परेशानियों की बहुत बड़ी वजह ये कि हमारे पास बहुत है। ख्वातीन के पास कपड़ों, जूतों, जेवरात की शक्ल में बहुत है, और मर्दों के पास वो इतनी लंबी चौड़ी फिगर्स और इतने प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सूरत में बहुत है। दे दीजिए, सारे रिश्तेदारों में बांटिए, देखिए आप परेशानी नहीं होंगे। रिलैक्स्ड, अपनी ज़रूरत का रखे, कुछ फ्यूचर के लिए रखे, इन्वेस्ट भी करें। ये नहीं इस्लाम कहता कि सारा पकड़ के दे दो, बट आज को तो पहले देखो। कुछ लोग आज को कुर्बान करके ना आने वाले कल के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, और फिर होता क्या, जब वो जाते हैं तो करोड़ों नहीं अरबों छोड़ते हैं, और बाद में लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर बाद में कम ही लोग हैं जो अब्बा जी को दुआ भी देते होंगे। इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरी है। मसलन ये देखें ना कि आप में से कोई ऐसी सिस्टर हैं जो यहाँ आने से पहले अगले हफ्ते का जो खाना है वो पका के आई हो। मिसाल एक हफ्ते बाद आपके घर में दावत है, तो आप उसके लिए चिकन को मैरिनेट कर आई हो और बिरयानी का मसाला बना आई हो, और अगर कर भी आई हैं लेकिन आज जो दोपहर में जाते ही खाना है या खिलाना है वो ना बनाया हो, अक्लमंदी है? बच्चे पूछे मामा क्या पका रही हैं, नहीं कहना खबरदार हाथ ना लगाना, ये 5 दिन बाद खाना है, बेवकूफ़ी है ना। तो आज की फ़िक्र करनी है, और आज की फ़िक्र में जीने वाले ही असल में अपने माल का सही इस्तेमाल करते हैं। आइए वाक्य पढ़ते हैं। इमाम तबरानी ने ये रिवायत नकल की है तलहा बिन जाहिया से, और उन्होंने अपनी दादी से, देखिए कितने खुशकिस्मत हैं पोते, ये हाईलाइट करें, अल्लाह के नबी के करीब का दौर यानी सहाबा और फिर सहाबा के बच्चे और उनको बच्चे, ये रिवायात में इस तरह तीसरी नस्ल तक पहुँचते हैं, यानी सहाबा फिर उनके बच्चे, मसलन हज़रत उमर, उनका बच्चा इब्ने उमर, तो बाद दफ़ा इब्ने उमर का बच्चा फिर हज़रत उमर से रिवायत करेगा, तो दादा ही हुए ना। तो ये खुशकिस्मत लोग थे, ये माहौल था दीन का घर में। क्या नकल करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कहा एक दिन मेरे पास तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, तो मैंने इन्हें खिलाफ़े मामूल कैफियत में पाया। मैंने अर्ज़ किया आपको क्या हुआ है, क्या आपने हमारे यहाँ किसी नापसंदीदा बात को देखा है जिसकी वजह से आप चुप हो गए? ये भी हाईलाइट करें। देखिए अभी तो हम सिर्फ ये बुक पढ़े ना, अगर आपको मैं हदीस पढ़ा दूँ, एक हदीस में से दसियों चीज़ें निकलती हैं अमल की। जैसे इस हदीस में से पहली तो देख ली कि माल की कसरत ने उनको परेशान किया, दूसरी चीज़ देखिए कि किसी नापसंदीदा चीज़ को देखा जिसकी वजह से आप चुप हो गए, ये है तबलीग। बेस्ट वे टू डू दावा इज साइलेंस। अगला आपको देखे तो सोचे ये चुप क्यों है, ये बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से, ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा। हम बोल बोल के अगले की भी मत मार देते हैं, अपना गला भी ख़राब कर लेते हैं, और फिर जब हम बोलेंगे ना तो हमारी बोलने की 1 टके की वैल्यू नहीं होती। कम बोलें, जो बात आप खामोश रह के सिखा सकते हैं ना उसमें अपने लफ्ज़ ज़ाया ना करें, और जो बात आप लफ्ज़ों से सिखा सकते हैं ना उसमें जुमले ना बोलें, और जो बात एक जुमले से आप सिखा सकते हैं ना अपने गरीबियों को उसमें आप घंटे की तकरीर ना करें। बच्चे भी कहते हैं अब अम्मी की टेप शुरू हो गई है, अब दादो भी बोलेंगी, खूब बोलेंगी, जब खुद थकेंगी तो छोड़ेंगी। इंतहाई नापसंदीदा बात है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके रिएक्शन में फिर हम खुद ही परेशान होते हैं। खामोशी की बड़ी खूबसूरत ज़ुबान होती है, तो नापसंदीदा चीज़ किसी में देखें, भाई में देखें, बहन में देखें, बच्चे में देखें, बच्ची, उसका शऊर ज़िंदा करने के लिए उससे बात ही ना करें। वो सोचेगा मैंने क्या किया। अच्छा बात हम पता क्या सोचते हैं, मैं किसी से इसलिए नाराज़ हूँ कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया। ये तो आम नाराज़गी है ना, ये तो हमारे कल्चर में बड़ी फेवरेट है, मुझे पूछा नहीं, मुझे खिलाया नहीं, मुझे दिया नहीं, मुझे लिया नहीं, मेरी बात नहीं मानी। नहीं, ये वो नाराजगी है कि मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है। आप अपनी हालत पे गौर करो, आपकी अपनी ज़िंदगी अपने लिए दुरुस्त नहीं है, ये तरीका का ठीक नहीं है। तो खामोश रहना सीखें। जब आप खामोश रहेंगे ना कसरत से, तो आपकी थोड़ी सी बात पे भी लोग कान धरेंगे, और आप जब सारा वक्त बोलेंगे तो फिर लोग इंतज़ार करेंगे कि कभी ये नाराज़ हो जाएं 2 दिन मेरे साथ, ताकि मुझे ये बातें ना सुननी पड़े। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। खैर, आगे देखिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो एक मुसलमान की बेहतरीन बीवी है। और ये अजराहे तकब्बुर नहीं कहा, बल्कि हकीकत के बयान की खातिर का, यानी देखें ना, अपने आप को मुसलमान का और बीवी को बेहतरीन बीवी का, ये है शौहर बीवी का प्यार। ये नहीं कहा कि आप तो एक बेहतरीन शख्स की मुसलमान बीवी हैं। बात तो वो भी ठीक थी, खुद को मुसलमान की हद तक ये एक मिनिमम दर्जा है, और बीवी को उनकी तारीफ़ कर दी कि आप तो बड़ी अच्छी बीवी हैं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं आपसे नाराज़ होऊंगा, ये मुराद है। असल बात यह कि मेरे पास माल जमा हो चुका है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। उन्होंने जवाब में कहा, इसमें आपके लिए परेशान होने की तो कोई बात नहीं, अपनी कौम के लोगों को बुलाइए और इस माल को इनमें तकसीम कर दीजिए। है ये मशवरा देने की ताकत? ये मांगिए। मेरा दिल कर रहा है इस हदीस को अलग से एक क्लिप बनाकर हम दूसरों से शेयर करें, और अगर आप अच्छे तरीके से बात करें, नतायज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन अगर ये हदीस किताब खोल के बग़ैर एग्जैजुरेशन के, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ किए बगैर, अगर आज जाके आप अपने घर वालों से शेयर करें, तो सोच तो पैदा होगी ना कि माल की कसरत भी परेशान होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरे को नेकी की रग़बत दिलाएं, ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और इसको अलग से काम करके, जितनी बात अभी तक हुई है 5-10 मिनट की, अगर बात बना के लोगों तक दे, तो शायद बहुत बड़ी सोच लोगों को मिल जाए। खैर, बीवी का मशवरा पसंद आ गया। कहने लगे, जाओ ए गुलाम, मेरी कौम के लोगों को बुलाओ। सादी कहती हैं कि मैंने खाजिन से पूछा, इन्होंने कितना माल तकसीम किया, यानी बीवी का मशवरा सुना और रिश्तेदारों के पास जाकर माल बांटने लगे। तो साथ खाजिन, खाजिन आज के दौर में आप कैशियर कह लीजिए, खजानची कह लीजिए। तो बीवी पूछती हैं, आज कितना माल तकसीम करके आए हैं? उसने जवाब दिया, 4 लाख। ये कब की बात है 4 लाख? 4 लाख उस दौर की बात है जब एक एक अशरफी बहुत थी, आज के तो शायद ये खरबों की बात है। और बांट के आ गए, सारी परेशानियां भी दिया है साथ लोगों को। आज दिल खोल के बैठे, यकीन करें, ये क्लॉग है। क्लॉग समझते हैं? आपका गटर बंद हो जाता है ना सिंक का, तो फिर आप कहते हैं कोई चीज़ आ गया, अगर रुकावट, क्लॉक, पीछे से पुश मारते हैं ना तो पानी सारा निकल जाता है। एक पुश मारने की देर है अपने माल के ऊपर, सारे दिल के गंदे कीने बुगज ख़त्म, अपने हाथ से दे दिला के दुआएं लेके जाएं दुनिया से। सिला रहमी पे दुआएं मिलती हैं, उम्र में बरकत होती है और रिस्क बढ़ता है। और आप कहते हैं उन्होंने 4 लाख दे दिए, हाय अब उनके पास कुछ नहीं रहा। वल्लाह ही अल्लाह की जो सुन्नत है, 4 पे कम अज़ कम 7 का ज़रब लगा लीजिए, उनको 28 लाख रुपए तो वही मिल गए होंगे, और अल्लाह उससे ज़्यादा देने पे कादिर है। ये बात हमें समझ नहीं आती। ये बात समझ तब आती है जब हमारे पास कुछ नहीं रहा होता। खैर, वाक़या कितना खूबसूरत था ये, इसमें से अमल की बातें। पहली बात देखिए कि तलहा की नज़र में माल का जमा होना खुशी की बात नहीं थी, बल्कि फ़िक्रमंदी की बात थी। क्यों? सवाल पैदा होता है, उसकी वजह क्योंकि इनकी नज़र माल के सबब पैदा होने वाले फितनों पर थी। आज भी देखे, बिगाड़ की इंतहा मालदार घरानों में होती है, उन्हीं के बच्चे बिगड़ते हैं, उधर रिसोर्सेज बहुत हैं, मरते एक हैंड टू माउथ है, सारा दिन कमाई करता है। आप देखिए ना, ये मजदूर हैं, सड़कें बनाते हैं, गलियां साफ करते हैं, ये गरीब क्या कर लेंगे? सुबह घर से कोई रोटी पे साग रख के खाते होंगे, दोपहर को इधर मेहनत करके कोई थोड़ा दाल सा खाते होंगे, घर जाके थके हारे अपनी फराइज पूरे किए सो गए। इनको क्या पता है कि फन एंड फ्रॉलिक क्या है, और इनको क्या पता है कि 1-1 हज़ार रुपये का एक एक बर्गर खाना है और 2 हज़ार का पिज़्ज़ा लेना है। ये बेचारे रात को सोते हैं, सुबह उठ के काम पे लग जाते हैं। अब इन्हीं की जेब में अगर 2-2 लाख रुपया डाल दिया जाए, तो ये यहाँ तो नहीं दिखेंगे, फिर दिल चाहता है कुछ करें, कुछ और इजहार करें। तो लिहाजा ये चीज़ सोचने की है। दूसरी बात, खुश नसीब बीवी, मुसलमान बीवी अपने शौहर को उसी के रिश्तेदारों में माल खर्च करने की तलकीन कर रही है, और कितना खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अल्लाह ने ऐसी बीवी दी। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करें, ये भी नहीं कहा सादी ने कि मेरे रिश्तेदारों को दे दें, वो मेरे भाई, मेरे बाप। बस दफ़ा हमें अपने रिश्तेदारों को देना बड़ा आसान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, शौहर के रिश्तेदार, और माल भी तो शौहर का ही था ना। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको भी ऐसा बना दे। तीसरी बात है कि बीवी का मशवरा देना, ये भी चीज़ आपको इसमें से दिख रही है। मशवरा भी मांगा, बीवी ने मशवरा भी दिया, और उनके मशवरे में इतनी तासीर थी कि शौहर ने 4 लाख खर्च कर दिए। आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि हमारे शौहर हमारी बात नहीं मानते? नहीं, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती ही मैं यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो आज से अपने लिए नियत कीजिए कि मैंने अपने शौहर को अच्छा मशवरा देना दे के देखिए, फिर आप उसकी बहारें संभाल ही नहीं सकेंगे। ये आजमा के देख लें चंद दिन। शर्त तो नहीं अल्लाह के साथ लगानी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत यही है। तो बहुत खूबसूरत वाक़या था ना। अब अगला वाक़या देखिएगा, ये भी उम्मे सलमा का है। वो कौन थी पीछे कल वाले सबक में? उम्मे सुलेम। ये कौन है? उम्मे सलमा। उम्मे सुलेम कौन थी? अनस की माँ, सहाबिया थी, दूर से अल्लाह के नबी की रिश्तेदार थी। और उम्मे सलमा कौन है? आपकी ज़ौजे मोहतरमा। उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा का मिस्कीन को कुछ देकर भेजने का हुक्म। हज़रत उम्मे सलमा के यहाँ कुछ मिस्कीन लोग आए और इसरार और तकरार से सवाल किया। एक औरत ने इन्हें बाहर निकल जाने का हुक्म दिया तो उन्होंने इस औरत को ऐसे कहने से मना कर दिया और हुक्म दिया कि हर मिस्कीन को कुछ ना कुछ देकर ही वापस भेजा जाए। हदीस उन्होंने बयान की है। हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने उम्मुल हुसैन से ये रिवायत बयान की है। वो उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ थी। कुछ मिस्कीन लोग आए और इनसे इसरार और तकरार के साथ सवाल किया। इन्हीं मिस्कीनों में औरतें भी थी। मैंने इनसे कहा निकल जाओ। उम्मे सलमा ने फरमाया लड़की हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया गया। क्या पता चला? हमें इस बात का हुक्म नहीं दिया गया मतलब क्या है कि सहाबा कराम में कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करे तो वो हुक्मन नबी की हदीस ही के मरफून आता है। मतलब यह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बल्कि इससे ऑपोजिट करने का हुक्म दिया है। और कम से कम हर एक को एक एक खजूर हाथ में थमा कर वापस कर दो। यानी साइल को झिड़को नहीं, व मसाइल फला तनहर। और कुछ दे दो, एक खजूर दे दो। किससे से बातें पढ़िएगा अपने लिए अमल की बात? पहली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म पर अमल करने के जज्बे के सबब उम्मे सलमा ने मिस्कीनों को कुछ दिए बगैर वापस भेजने से मना किया। तो हम सबको भी इसी का हुक्म है कि अल्लाह के नबी की बात पर जिस हद तक अमल कर सकें करें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया। ये आप भी दोहराइएगा और ये बड़ी प्यारी बात है, इसको याद कर ले। क्या है? व इज़ा अमर तुकुम बिशयिन फातु मिन्हु मस्ततातुम। और जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो ता हद इस्तात, यानी जितनी तुम्हारी इस्तात है इसको बजा लाओ। तो हम सबको भी नबी सल्लम के हर फरमान को अपने लिए हुक्म समझना चाहिए। फिर दूसरी बात देखिए कि नबी सल्लम के इरशाद के ख़िलाफ़ बात का उम्मे सलमा ने इख्तसाब किया। यानी उम्मे सलमा की खूबी क्या थी कि अल्लाह के नबी की बात के ख़िलाफ़ एक अमल होते देखा तो चुप नहीं रही, उस पर उन्होंने दूसरों का इख्तसाब किया। अगरचे वो बात इन्हीं की तायीद में कही गई थी और इस बात का रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अन्फुसिकुम। ए ईमान वालो, इंसाफ और सख्ती पर कायम रहने वाले, अल्लाह ताला के लिए गवाही देने वाले हो अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ हो। तो क्या सीखा हमने इस वाक़े से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर अमल करना है। अब यहाँ एक सवाल आपके जहनों में ज़रूर आना चाहिए कि हर मांगने वाले को दें तो ये जो सड़कों के किनारे खड़े हैं इनका क्या करें? चौकों पे, चौराहों पे। लाहौर में मुझे अभी इतफाक़ नहीं हुआ इस तरह की पब्लिक ट्रैवलिंग का, लेकिन कराची के 2 वीक में से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हुआ हमारा और रश इतना कंजस्टेड है सारी सड़कें। हल्की सी गाड़ी हल्की भी हो ना, रुकने तो दूर की बात है, चारों शीशों में चार। और जो तकलीफ़ दे बात मेरे लिए इस दफ़ा है वो क्या कि बच्चे, यंग औरत और बच्चे। अब बड़े बैगर्स नहीं मुझे दिखे, वो कहीं और होते होंगे चुराहों पे। एक जगह हम गए, कुछ काम था तो वहाँ गाड़ी चाचा ने रोकी तो हम दोनों निकले। तो बाद में ये मेरे हस्बैंड मेरे पास कहते हैं कोई कपड़ा है तुम्हारे हाथ में, कपड़ा दे दो। यानी अनसिला कपड़े थे तो कह रहे हैं ये दे दो। मैंने कहा क्या है इससे, क्या लगना है करना? नहीं, वहाँ एक बच्चा है तो उसने शलवार नहीं पहनी हुई ना, पैजामा नहीं पहना, छोटा बच्चा है। तो माँ की वो कहती है इसके पास कपड़े नहीं है तो उसको ये कपड़ा दे दो वो पहना ले। मैंने कहा वो कैसे पहनेगी पहनाएगी किधर है? मैंने देखा तो वही एक औरत है तो वो बच्चे को, गोद का बच्चा है साल का शायद, लेके बैठी हुई है तो नीचे से नंगा है। अब सारा शहर आता है और खोल के दिखा रही है उसको किस किस कपड़े नहीं है। मैंने इनको कहा कि ये कपड़ा उसके किस काम आना है। मैंने कहा ओके मैं कुछ करती हूँ। उसी जगह जहाँ हम उतरे हुए थे तो सामने देखा तो रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान थी ना, तो फिर हम वहाँ गए। फिर वहाँ उसे कहा कि कोई बच्चे की ट्राउज़र शलवार निकर जो कुछ है वो दिखा। उसने 2-3 चीज़ें दिखाई, वहाँ से हमने खरीदी और लेकर आए। वो कह रहा है किसके लिए लेना है, तो मैंने उसे कहा कि वो बच्चा है सामने ना उसके नाप का। कहता है अब उसको पहना के जाइएगा। क्यों? उसने अभी थोड़ी देर बाद वापस करने आ जाना है मुझे। और यही हुआ, हम उसके पास आए तो वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो कहीं और थी, तो हम गए तो उसको दी निकर, पैसा दो पैसा दो। तो मैंने उसे कहा कि ये पहनाओ, ज़बरदस्ती करके हमने उसके बच्चे को वो निकर पहनाई। और ये पेशा है। और वो लोग दुकानदार कहते हैं ये तो रोज़ इधर होती हैं, कल जाए। वो जो सामने था दुकान वाला, वो कहता है ये कल आएगी तो फिर नहीं बच्चे ने पहनना होगा। और सड़कों पे अब ये जो बात है ना, मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, यकीन करें मैं आपको सच कहूँ कि मूड ख़राब हो जाता था। कोई काम आप कर रहे हैं ना, अब जहाँ गाड़ी रुके, अब हम पाकिस्तान के लोग जो है ना, हमें अंदाज़ा है, और अब तो कुछ कसरत से ही हो गया। मेरे हस्बैंड जो है वो, उन्होंने ये कुछ नहीं देखा। हर सड़क के जहाँ गाड़ी रुकती है, चार शीशों में, ये मुझे कहते हैं कुछ दे देते हैं, पैसे जो जेब में होते हैं जितना का भी नोट है उठा के दे देंगे। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, या मेरे पास उनके लिए खाना होता था, यकीन करें सैंडविच है, बर्गर है, जूस है, लेकर एक जगह तो ऐसा हुआ कि कितनी देर लाइन में लग के उनके लिए कुछ लिया खाने को। छोटे छोटे बच्चे पाँव पड़ने लगे, ऐसे पीछे कपड़ों को पकड़ने लगे। इन्होंने पकड़ के वही जो मैंने इनका खाना भी, हमने और भी लोग थे खरीदा, वो पूरे का पूरा खाना उसको दिया। मुझे बहुत आया, मैंने कहा कि ये इसको ही देना था तो आधा घंटा पहले क्यों रखे। मैंने कहा उसको क्या लगे ये क्या है, कितना महंगा क्या है, आप क्या करें। फिर मैं क्या करती थी कि कैंडीज आपको ये करना सिखा रही हूँ, सबको देना है ना, आप 100 रुपये की कितनी 10-12 कैंडी, 20-25 छोटी सस्ती आती होंगी ना, बच्चे तो इन चीज़ों से खुश होते हैं। बच्चों को कैंडी दे दें, सेब रख ले, ऑरेंज रख ले, और खाना दे तो सच्ची बात है खुश नहीं होते वो, उनको पैसे चाहिए। फिर इसी तरह से एक और क्या, मतलब इस तरह के बहुत सारे वाक्यात सिर्फ 8-10 दिन में हमने देखे। एक चीज़ देना तो दूसरी। हाँ, एक जगह गाड़ी रुकी तो इनके बिस्किट थे, तो इन्होंने उठा के, तो उस आदमी था अच्छा खासा, और वो जो हमारे साथ चाहता था, कहने लगा ये ड्रंक है, इसकी आंखें बता रही हैं इससे बात नहीं हो रही। खैर जो उससे बात करने लगे हमारे, हम किसी के इंतज़ार में खड़े थे, वो उसने हमारी खिड़की पकड़ ली। इन्होंने पकड़ कर उसको बिस्किट का बंद फेंक दिया, तो कहता अब चाय दिलाओ, वो होटल है उधर से मुझे पैसे दो, मैं चाय पीऊँगा। इन्होंने कहा तुम उसके पास कहना मुझे चाय चाहिए, वो तुम्हें चाय दे देगा। जितनी देर हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी रही, उस बंदे ने नहीं छोड़ी हमारी गाड़ी। मूड ख़राब जिस काम पे गए हैं वो दिल नहीं करता। मुझे तो अजीब लगता था कि मुझे कहे कि आप अपना मूड नहीं ख़राब करें, लेकिन मुझे एक तो तकलीफ़ होती थी, दूसरी वहशत। मैं खाना कोई गाड़ी में अब रखना छोड़ दिया था कि ये इन्होंने नहीं खाना खाएंगे तो घर में खा लें, ये इनके नसीब में नहीं। और घर में भी रखा हुआ ना, तो मैं इनको देखती हूँ कि जेबों में डाल के ले जाते थे, जो डेट्स नट्स एक चक्कर में जाएंगे सब ख़त्म। चलिए अच्छी बात है, लेकिन देखिए कि ये प्रोफेशनल पैकर्स हैं ये बच्चे इतने। मैंने कहा चलो इन बच्चों को नमाज़ पढ़ते हो, नहीं आती इन्होंने, फिर ये बच्चों से ऐसी बातें भी करते थे, लेकिन इनको स्कूल छोड़कर आपने जब मांगने पे लगा दिया, तो अब बताएं अब यहाँ इस हदीस पे आप कैसे अमल करें। तो फत्तकुल्लाह मस्तता, तो छोटी छोटी 2-2 रुपए की, 4 की, कोई सौंफ, कोई सुपारी, कोई ऐसी चीज़ कोई रख लिया करे वो दे दिया करे। पैसे ना दें इनके हाथों में, पैसे तो इनसे दूसरे ले जाते हैं, और खाने की भी चीज़ ऐसी दें कि ये फ़ौरन खा लें। यदि सारी बात का खुलासा ये है कि जब नाशुक्री है ना, और मुझे साफ नाशुक्रापन दिखता था कि जिसको जो दे देंगे ना वो उस पर खुश नहीं है, तो ये ना शुक्री और ना कदरी की भी बात है। तो बहरहाल ये है कि आपके मेरे लिए अमल ये है कि जो दे, लेकिन बुरा ना कि उनको बाद लोग बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, ये है वो है, ज्यादा बात ना करें और ज्यादा उनको बुरा ना कहें। जो देना है वो दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाए, बात ना करें ज्यादा। आगे चलते हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का भाई को शादी करने का हुक्म देना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने शादी ना करने का इरादा किया, तो इनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा ने इनका एहतसाब करते हुए इन्हें शादी करने का हुक्म दिया। इमाम शाफ़ी ने अमर बिन दीनार से रिवायत नकल की है, यकीनन इब्ने उमर ने निकाह ना करने का इरादा किया तो हफ्सा ने इनसे फरमाया शादी करो, अगर तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ और वो तुम्हारे पास ज़िंदा रहा तो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। देखिए कितनी प्यारी नसीहत है कि किसी को शादी की और कोई हिकमत ना समझ आए तो ये तो है कि आपके लिए औलाद होगी जो बाद में सदका जारिया बनेगी। तो अमल की बातें क्या हैं, हज़रत हफ्सा की ये जो बात है, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा से भी इसमें कुछ थोड़े से अल्फाज से फ़र्क किया कि इज़ा मात अल इंसान इन क़तान हुआमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, जब इंसान मर जाता है तो उसके नामे आमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, और वो 3 चीज़ें कौन है, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया का कोई काम उसने किया, और इल्मिन युन तफ़ाउ बिही, और इल्म सिखाया जिससे बाद में नफ़ा हासिल किया गया, और वलदिन सालेहिन यदू लहू, या नेक औलाद जो उसके लिए बाद में दुआ करे। तो ये हदीस आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत हदीस भी है और आसान लफ्ज़ हैं, और बहुत जगह ये कोट होती है हर जगह। मुझे तो लगता है जहाँ भी कोई फौत होता है या लोग पूछते हैं कि हम कहाँ खर्च करें, तो मैं इस हदीस को ज़रूर मेंशन करती हूँ, तो क्या पता चला कि शादी की एक हिकमत नेक औलाद का मिलना और बाद में उसका सदका जारिया बनना। फिर दूसरी बात देखिए कि इब्ने उमर नेकियों के कमाने के बहुत शौकीन थे, बल्कि जरबुल मिसल थे। लोग मिसाल दिया करते थे कि आप में नेकी की जितनी तलब है, यानी इब्ने उमर की जैसी नेकी की आप में हिरस है। तो ये चीज़ हज़रत हफ्सा को चूँकि पता थी, बहनें भाइयों का मिजाज बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो उन्होंने फिर शादी करने की हिकमत में ये बात बताई कि नेकियों का मौका मिलेगा। देखिए ये सीखना होता है तबलीग करते हुए। अगले का वीक पॉइंट क्या है, अगले का फोकल पॉइंट क्या है? आपके शौहर का और ही कुछ होगा, आपके एक बेटे का कुछ और होगा, आपके दूसरे का कुछ और होगा, आपकी बेटी का कुछ और होगा। बस हर एक का वो वीक पॉइंट लेके उसके मुताबिक चले, उसको आगे लेके चले। आप कहते हैं नमाज पढ़ो, तो ये तो हुक्म है। किसी को अगर लालच है तो आप उसे जन्नत की बात करें, किसी में खौफ है तो उसको जहन्नम से डराएं। हम डरने वाले को अगर जन्नत की बातें बताते रहें कोई फ़ायदा नहीं होना, और जो बहुत ही खुश फहमियों में मुबतला उसको जहन्नम से डराते रहें तो नहीं फ़ायदा होगा। तो इन्होंने अपने भाई का मिजाज पहचाना, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर दवा देने से पहले मिजाज पूछता है, आपको डिस्प्रिन से एलर्जिक तो नहीं है, आप इंसुलिन तो नहीं लेते? और याद रखें रिएक्शन है आज बहुत सारा। हमारे घरों में जो लोग हमारी बातें नहीं मानते, अच्छी बात को सुनते नहीं, बुरी पे रुकते नहीं, ये बहुत बड़ी वजह रिएक्शन भी है। हैं और भी बहुत सारी वजह, उनका भी कसूर है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, माहौल भी प्रमोट कर रहा है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि शुरू से जिस माँ ने अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ा हो, बड़े होके वो बच्चे उसकी बात ना माने। मैंने नहीं कभी देखा। मुझे बेशुमार ऐसी सिस्टर से मिलने का मौका मिला है कि जिनके बच्चों को देख कर वाकई हज़रत इस्माइल याद आ जाते हैं कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये मकतब की करामत थी या किसी का फैज़ान नज़र था? और मैं सोचती बहुत हूँ जब मैं लोगों के घरों में जाऊँ, हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, हमें अब अपने रिश्तेदार और गैर में कोई फ़र्क नहीं लगता। मैं आपके में से भी किसी के घर जाके रह सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि हम मुसलमान बहन भाई हैं। ये तकल्लुफात नहीं है कि अपना है कि बेगाना है, जिसके साथ जो मौका मिल जाता है। तो मैंने वहाँ जा जा कर देखा है इतने बेहतरीन घराने, इतना प्यारा माहौल, दिल ही नहीं करता वहाँ जाके वापस आए। और कभी बाज़ हालात ऐसे भी होते हैं कि जाके एक दिन गुजारना मुश्किल होता है। जो चीज़ मैंने देखी है ना, क्लोज़ कम्युनिकेशन। हम छोटे बच्चों को अपने साथ टिकने नहीं देते। शौहर बीवी आपस में भी लिए दिए रहते हैं, कुछ झगड़ते हैं, कुछ खामोश रहते हैं। एक नेचुरल ज़िंदगी होनी चाहिए घर की। कामयाब घराना कौन सा है जिसमें हर बंदा अपने जज्बात का इजहार करे? ये लिखिए बात। देखिए लोगों ने तो कहा ना फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। घर वो घर है। मैं आपको आइडियल होम या आइडियल रिलेशनशिप की एक रेसिपी दे देती हूँ। बेहतरीन घराना वो है, फैमिली कह लें, घराना कह लें, ख़ानदान कह लें, जहाँ हर बंदे को अपने जज्बात के इजहार का पूरा मौका मिले और दूसरों के जज्बात को समझें। ये कोल्ड वार होती है, ये सिर्फ बस स्टेशन है जहाँ सारे लोग आके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। अपने वक्त पे एक काम पे निकल गया, दूसरा अपने काम पे चला गया, तीसरा स्कूल चला गया, चौथा उधर चला गया, फिर ख़ास वक्तों में जमा हुए, सबको मेस में बैठ के खाना खाना पड़ा। ये हॉस्टल तो होता है, घर वो है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने शौहर से अपने दिल की बात ना करूँ? क्या मुझे मज़ा आएगा उनसे बात करने का? दिल की हर बात, मैं नहीं कहती दूसरों की चुगलियाँ करें, गिबतें करें। क्या वजह है कि मैं अपने बच्चे से अपनी दिल की बात ना करूं? और क्या बड़ी बात है कि मेरा बच्चा मेरा इशारा ना समझे? ये कब होगा? जब आप अपने करीब करेंगे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। और ये जो है ना हमारा टॉपिक, ये रियली इज़ अ बिग टॉपिक। अगर सिर्फ इस टॉपिक को मैं समझाने के काबिल हो गई और आप समझ गए, तो आप सबके घरों में खैर आनी चाहिए। ये किताब बराए किताब नहीं है, पढ़ना बराए पढ़ना नहीं है, ये किताबें आपके घर में फिर रही हैं। आपको उन किताबों के ऊपर इस बातों को अप्लाई करना है। आज बैठ के सोचें मेरे घर का इशू क्या है? क्या मैं बहुत बोलती हूँ? क्या मैंने अपने बच्चे को ढीठ कर दिया है? या मैं बिल्कुल नहीं बोलती, मैं डल हूँ, मैं खामोश शैतान हूँ कि बुराई देख के नहीं बोलती? मेरा अपने बच्चों और अपने घर वालों, और बच्चों की बात बार बार इसलिए आ रही है कि औरतों का कम्युनिकेशन है ही बच्चों से। हर घर में तो बहन भाई नंदे देवर जेठ नहीं होते, हर घर में आप देखिए कि अपने बहन भाई भी नहीं होते। अमूमन जिनसे हमारा दिन भर वास्ता होता है वो बच्चे होते हैं या शाम को शौहर है। तो बच्चे और शौहरी की बात कर लें या मुलाजमों की बात करें, क्या मैं उनके साथ क्लोज कम्युनिकेशन रखती हूँ? क्या वो मेरा दुख दर्द समझते हैं? क्या वो मेरे हालात को पहचानते हैं? देखिए ज़रूरत के लिए तो सब जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। ये मासियाँ भी हमारी इतनी बातें क्यों सुनती हैं? फिर आ जाती हैं अगले दिन, ज़रूरत लाती है उनको। तो अभी बच्चों की हमसे ज़रूरतें हैं वो तो जुड़े हुए हैं, शौहर को अब कोई इस वक्त दूसरी बीवी के मिलने की उम्मीद नहीं है तो वो हमें बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती कि आप करीब हैं, आप दूर हैं, आपका दिल एक साथ है। दूर बैठ के आप कह दें इस वक्त वो ये कह रहे होंगे, इस वक्त वो ये सोच रही होगी, इस वक्त वो ये रिएक्ट करेगी, इस बात को सुनकर ये होगा, और जब बात हो तो 100% बात सच निकले। सब काम छोड़ दे ना, एक औरत शॉपिंग करना छोड़ दे, घर का काम भी छोड़ दे, मासियां बहुत हैं आपके पास इधर, छोड़ दे उनके ऊपर, लेकिन आप इस पे काम करें कि मेरा घर क्या होम स्वीट होम है, क्या ये हैप्पी फैमिली है, और आप अपनी ज़िंदगी में ये कर लें। वरना देखिए एक फितरी मोहब्बत तो रहती है, वो बच्चे जो सारी ज़िंदगी माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप के मरने पर रोते, हाय हम कितने बदबख्त थे, हमने अपनी माँ की नहीं सुनी, हाय अब बाप भी नहीं रहा जो डांटता था, पहले तो रात को घर आते थे डरते थे अब्बा जी डांटेंगे, अब तो कोई बुलाता ही नहीं, पहले तो बुलाते थे अब तो कोई फ़ोन ही नहीं करता चाहे 4 दिन घर ना हो, कहते ना उसका क्या फ़ायदा, ज़िंदगी में तो खुशी नहीं दी। और आप देखें कि बस माएँ इस बात पर कुड़ती हैं कि उनके बच्चे क्या कहते हैं, पैसे तो आपको हम देते हैं, आपकी कौन सी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, तो क्या ज़रूरी है कि हम भी आपके पास बैठे, राइट? तो ये ठंडे रिश्ते हैं, ये ख़ानदान नहीं है, रिश्ता वो जो आपके दिल के अंदर खून की तरह रचा हो। तो ये सारी बातें मुझे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी अगर हर बंदा, अब मुझे तो नहीं पता आपके हालात के ना मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन आपको मैं एक सोच देना चाह रही हूँ इस टॉपिक के दौरान कि कम अज़ कम हम अपने घर वालों पर तो काम करें, बाकी बातें तो मजबूरियों की नज़र हो जाती हैं। घर में तो कोई नहीं रोकता ना आपको अच्छी बुरी बात के रोकने टोकने से, अपने शौहर से आप मिजाज समझें, मेरे शौहर क्या पसंद करते हैं, क्या तरीक़ेकार है उनका, बस उनके साथ बात करें। और एक दिन मियाँ साहब ये बात, पहले दिन बड़ा प्यार बड़ी मोहब्बत, दूसरे दिन ज़रा सी बेगानगी, और तीसरे दिन तो फिर तड़ी भी दे सकते हैं और फिर उनको सोचने का मौका दें। ऐसी बातें मर्द मानते हैं जिस पे उनको पता होता है कि अब बात बिगड़ रही है, अब मुझे इसकी माननी पड़ेगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमाए।